ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ शांति शांति शांति। उपस्थित प्रिय आत्मन, व्यक्ति महान है, आप नर या नारी के रूप में आए, सवाल इसका नहीं है कि आप नर हैं कि नारी, लेकिन हर व्यक्ति में, हर नर में, हर नारी में जो शाश्वत है वह है उस शाश्वत की, सत्य की, उस चेतना की, उस आनंद की पहचान हो जाए, वही व्यक्ति की पूर्णता है। आप सब नर या नारी के रूप में मेरी दृष्टि से भारत की आत्मा हो और आज की आवाज हो। उसी आत्मा की बात, उसी आवाज की बात आपके समक्ष उपस्थित करना चाहूंगा। आप कहीं भी जन्मे, लेकिन आप अपने आप को देखें, अपनी शक्ति को देखें, अपनी कर्म सत्ता को देखें, अपनी जिम्मेदारी को देखें। हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है। ईश्वर ने हमें आपको बड़ी शक्ति दी है। हमारा आपका जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन विचार करें, क्या हम अपने जीवन को सुंदरता के साथ चला रहे हैं? आप अपने जीवन में झांक कर देखें तो पाएंगे कि किसी चीज की कमी नहीं है। नर या नारी के रूप में जो भी यहां उपस्थित हैं, अपने आप में उपस्थित हो जाओ। जब हम धर्म की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, उसके पीछे कोई महान व्यक्ति ही है। यहां पर जितने बैठे हैं, हमारी बात पूरे विश्व के लिए है, लेकिन विशेष तौर से आपके लिए। आप पहले स्वीकार करें, अपनी इज्जत करें। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो आपकी इज्जत कौन करेगा? आप अपनी नजरों में गिर गए तो दूसरे कैसे आपको उठाएंगे? एक क्षण के लिए भी आप अपने आप को गिराए नहीं, अपने को पतित नहीं समझें, अपने को कमजोर नहीं समझें। सूरज निकला है, सूरज आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की आंख में मोतियाबिंद है तो सूरज क्या करेगा? पूरी प्रकृति, पूरा विश्व आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप कमजोर होंगे तो मदद नहीं मिलेगी। कारण यह है कि जगत, ये प्रकृति कमजोर की मदद नहीं करती। एक पौधे की बात ले लें, अगर पौधा प्रबल है, सिंचन करेंगे तो उसका विकास होगा। अगर पौधा कमजोर है, अगर पौधा सड़ रहा है, पानी का सिंचन करने से और सड़ जाएगा। ये प्रकृति का नियम, ये नेचर का नियम सबके साथ समझकर, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, हमारे वैज्ञानिक प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। आप वैज्ञानिक हैं तो नेचर की बात करें, आप आध्यात्मिक हैं परमात्मा की बात करें, परमात्मा से मदद लेना चाहते हो आध्यात्मिक हो, अगर आप वैज्ञानिक हैं प्रकृति से नेचर से आप मदद लेना चाहते हैं तो आपका बलवान होना हर तरह से बहुत ही जरूरी है। जन्म से आप कमजोर नहीं है, जन्म से कोई भी कमजोर नहीं है। आपके देश में कि विदेश में, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर बना कि राष्ट्रपति बना, साहित्यकार बना कि वैज्ञानिक बना, उसमें बड़े घर के भी लोग हैं, गरीब घर के भी हैं, लेकिन अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से अपनी शक्ति को जगाया, आपके अंदर जो सत्य है उसको आप समझे, सत्य है उसको बनाया नहीं जाता, उसे आपको प्रकट करना है। लकड़ी में अग्नि है लेकिन बिना घर्षण के अग्नि प्रकट नहीं होगी, आपके दोनों हाथों में भी अग्नि है लेकिन जब तक फ्रिक्शन घर्षण नहीं होगा आपके हाथ में से भी अग्नि नहीं प्रकट होगी। वो है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं, जो सत्य है उसकी कोई जाति पांति नहीं है। धर्म की जो व्यवस्था है, ह्यूमन राइट्स के नाम से जो व्यवस्था है, इंसान का हक, मानव का अधिकार, इस समय समय पर बदलता रहा। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जो सत्य है उसे तो मैं प्रकट करूंगा ही, क्योंकि सत्य मैं नहीं प्रकट करूंगा, सत्य बताने की जरूरत है, खंडन या किसी के विरुद्ध में नहीं। एक बार मुझसे पूछा गया कि स्वामी जी आप किसी के विरोधी हैं, मैंने कहा मेरी शत्रुता किसी से नहीं, मेरा विरोध किसी से भी नहीं, लेकिन जो अंधेरे में हैं, जो कमजोर हैं, उनकी कमजोरी को दूर करना चाहता हूं, उनको अंधेरे में से निकालकर प्रकाश में लाना चाहता हूं। अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए अगर शायद कभी कठोर बन जाऊं तो आप मुझे विरोधी न मानिएगा, शत्रु न मानिएगा, वह मेरा एक धर्म है। मां बच्चे को जगाती है, समय पर नहीं जागा, थोड़ा क्रोध में बोल देती है, जगाने के प्रयास में कभी हल्का थप्पड़ भी लगा सकती है, लेकिन मां विरोधी नहीं है। जगाने के लिए, प्रकाश की ओर लाने के लिए, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम संत कभी कठोर हो सकते हैं, कभी आपको ऐसा लग सकता है। तो मेरी शत्रुता किसी से भी नहीं है, लेकिन अज्ञान से, अंधेरे से, कमजोरी से जरूर मैं शत्रुता रखता हूं, पसंद नहीं है। वही बात आपको बताना चाहता हूं। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए मेरे समक्ष, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे। मैंने कहा धर्म में सब कुछ आता है, रामायण पूरा आदर्श है, महाभारत वास्तविक जीवन है, आदर्श को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आदर्श में जो नियम है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नियम इतने पुराने हो गए और आज व्यक्ति के समक्ष विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, उन नियमों का आदर करते हुए उसे मैं बदलना चाहूंगा। बदलना इसलिए चाहता हूं कि आपका विकास हो। साहब ने थोड़ा जिक्र किया रामायण और महाभारत का, आप स्वयं विचार करें कि भारतीय संस्कृति में जड़ता नहीं है, दृढ़ता है, और वो दृढ़ता जड़ता न बने। आदर्श का नियम है, मैं उसके हक में हूं, पक्ष में हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि नियम की जड़ता व्यक्ति को समाप्त कर दे, मानव की महक धूल में मिल जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति में रामायण के आदर्श के बाद महाभारत की जरूरत क्यों पड़ी कि कोई आदर्श कोई नियम व्यक्ति को पतन की ओर न ले जाए। नियम की जड़ता व्यक्ति का सत्यानाश न करे। आप आंख बंद करके विचार करें, हजारों साल पहले कुछ नियम अपनी जगह ठीक रहे होंगे, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन वो नियम आज अगर आपके विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, आपको ऊंचे उठाने में नहीं मदद कर रहे हैं, तो समझ करके उसमें से रास्ता निकालो। हमें आगे बढ़ना है, हमें आज का सृजन करना है। भूत हमारे पहले जो कथाएं हैं उन कथाओं से आज का निर्माण होना चाहिए, उन कथाओं के आधार पर हम किसी तरह आज कमजोर न बने। हम आप आज हैं, आज का गौरव हैं, आज की आवाज हैं, आज का हमारा गौरव, आज की हमारी आवाज अगर कमजोर हो गई तो मनीषानंद कैसे कहेंगे कि भारत की संस्कृति, भारत का समाज, हमारा राष्ट्र भविष्य में बलवान बनेगा। आपको देखकर मैं भविष्य का अंदाज लगा सकता हूं, आपके विचारों को जानकर ही भारत के भविष्य की कल्पना मैं कर सकता हूं। आप सुबह रोते हुए उठते हैं कि हंसते हुए उठते हैं? आप भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं कि कमजोर? अगर आप कमजोर हो गए, आज आप कमजोर हो गए, तो भविष्य बलवान कैसे बनेगा? संत और हमारे शास्त्र, संतों की अनुभूति शास्त्र है, और शास्त्र व्यक्ति को पूर्ण बनाने में मदद करते हैं। व्यक्ति जब पूर्ण बनेगा तो समाज और राष्ट्र भी पूर्ण बनेगा। आज आप जो यहां उपस्थित हैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप में अपरंपार शक्ति है, लेकिन शायद भूल गए, शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो प्रथम सत्य की बात करूंगा, सत्य की भी बात करूंगा, समाज और राष्ट्र की भी बात करूंगा। प्रथम सत्य की, आप सत्य हैं, सत्य का विनाश नहीं है। वेद भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, सत्य है। अब पहले सिद्ध करूंगा कि जो सत्य है वो है क्या। जा विचार करो, आप कल भी थे, इसके पहले भी थे, ये 10 दिन में देखिए, आप दिल्ली गए, कलकत्ता गए, बंबई गए, मुझे टेलीफोन किया, तो 10 दिन पहले भी आप थे, कल भी आप थे, आज भी आप हैं और कल भी आप रहेंगे। सूरज निकला है, दोपहर होगी, संध्या होगी, डूबेगा, फिर निकलेगा। ये जीवन एक क्रम है। सूरज निकलता हुआ आपने देखा, डूबता हुआ भी देखा, फिर निकलते हुए देखोगे, लेकिन आप तो वही हो। आप में क्या फर्क पड़ा? आपके अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, आप कहते हैं स्वामी जी आज मैं आनंद में हूं, कोई कहता स्वामी जी आज मैं दुखी हूं, इस मैं का पता लगाया आपने? ये दोनों को देखने वाला कोई आपके अंदर है जो शाश्वत है, त्रिकाल बाधिता है और हमेशा है? मैं दुखी हूं उस दुख को देखने वाला कोई है? मैं आनंद में हूं, मैं सुखी हूं, उसे भी देखने वाला कोई है? तभी तो कह रहा है यह मैं। अगर आप अपनी स्थिरता इसमें बना लें, सुबह आप उठे, स्नान ध्यान किया, ऑफिस में गए, सरकारी कामकाज किए, आपका जो कर्तव्य उसका पालन किया, फिर शाम को घर आए, भोजन किया, फिर सो गए, फिर उठे, आप उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम काज करते हैं, वापस फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, ये जागना और सोना, ये आपके अंदर घटना घट रही है, आप तो वही को वही है। जाग भी आप रहे, सो भी आप रहे, लेकिन आप में फर्क क्या पड़ा? जब आप अचानक किसी के द्वार पर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हो। अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं मैं हूं, बाद में कहते अपना नाम बताइए, पहले आप यही कहते मैं हूं, और जब मैं में स्थिति हो जाएगी तो हूं खत्म हो जाएगा। मैं के साथ जब हूं लगा है तो उसका संबंध व्यवहार से है और व्यवहार अपूर्ण है। ये जितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था करो, लेकिन व्यवहार में कभी पूर्णता नहीं आएगी, इसमें विषमता रहेगी। और जब आप अपने सत्य में स्थिर हो जाएंगे तो आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आपको इस इंद्रियों के द्वारा आपका ही ज्ञान नहीं है, ऐसे मुकाम पर आप पहुंचेंगे जिस मुकाम में आपको पता ही नहीं चलता। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा च, वहां मन की गति नहीं, बुद्धि की गति नहीं, फिर भी घटनाएं आप में घट रही। आपके कमरे में दीपक जल रहा है, आपके कमरे में ट्यूबलाइट है, आप हंस भी रहे, रो भी रहे, सो भी गए, जाग भी गए, भोजन भी कर रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, लेकिन प्रकाश बराबर आपके साथ है। आपके हंसने से, रोने से, भोजन करने से, उपवास रखने से, दीपक के प्रकाश से कोई मतलब नहीं, वो है। वो जो कर्म की सत्ता है वो आपके हाथ में है, प्रकाश है। आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, गीता का भी पाठ, ये सत्ता आपकी है। आप प्रणाम भी कर सकते हैं, अच्छे मंत्र भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्यक्ति को एक स्वतंत्रता मिली, पशु को नहीं है, पंछी को नहीं है, हमें आपको ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला। और सबसे बड़ा वरदान है स्वतंत्रता का, अपने ढंग से जीने का, अपने तंत्र से चलने का, अपने ढंग से सुनने और बोलने का, अपने ढंग से विकास करने का। ये परमेश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से जबरदस्त वरदान आपको मिला। इस वरदान का उपयोग आप कितना करना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे? तो जिसे कर्म सत्ता की बात की गई, सत्ता अधिकार, अधिकार का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, ये आपकी बात है। तो आप इज्जत चाहते हैं नहीं चाहते, ये निर्णय कौन करेगा? आप क्या चाहते हैं? जन्म से देखें तो हर व्यक्ति कहीं भी जन्मा, हर बेटा हर बेटी, हर पुत्र हर पुत्री कहीं भी जन्मे, लेकिन अंदर से सबकी भावना यही है कि मैं बहुत ऊंचा व्यक्ति बनूं। ये बात आपको किसने सिखाई? क्योंकि आपके अंदर विराट बैठा है, आपके अंदर जो है कोई मामूली शक्ति नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब का बच्चा है, आप उससे पूछें कि भाई आपके पिताजी रोज का 10 रुपया कमाते हैं, आप बड़े होकर क्या करोगे? वो कहेगा मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, 1000 रुपया रोज कमाऊंगा। ये किसने सिखाया उसको? हर व्यक्ति नर या नारी के रूप में आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा है, आपके अंदर जो देवत्व है, आपके अंदर जो डिविनिटी है, प्रथम उसको सत्य के नाम से, वो है। लेकिन एक जो स्वतंत्रता आपको मिली, है तो आपके पास सत्य, लेकिन स्वतंत्रता मिली, आप असत्य भी जीवन बिता सकते हैं। जन्म से प्रेम आपको मिला, आपकी स्वतंत्रता है कि घृणा भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें आपको कितना सुंदर हाथ दिया, इससे आप एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं और हत्यारे भी बन सकते हैं। एक डॉक्टर के हाथ में ऑपरेशन का चाकू आता है, वह दूसरों को सुख देता है, एक डाकू के हाथ में भी वो चाकू आ जाए तो जीवन ले लेता है। आप अपना जीवन बना भी सकते हैं, जीवन बिगाड़ भी सकते हैं। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं कि फला व्यक्ति के कारण मैं दुखी हो गया, दुख का कारण आप स्वयं हैं। ये जो कर्म की सत्ता आपको मिली, कर्म की सत्ता की स्वतंत्रता आपकी है, लेकिन परिणाम की सत्ता प्रकृति या परमेश्वर पर है। आप अपनी सत्ता का उपयोग क्या कर रहे हैं? आप मानव बनना चाहते हैं कि शैतान बनना चाहते हैं? हम संत, हमारे शास्त्र आपके अंदर से कमजोरी निकाल करके, हम कुछ देते नहीं आपको, बल्कि आपके अंदर जो कमजोरी वो ले लेते हैं, वो निकाल देते हैं, और आपके अंदर वो सत्य प्रकट हो जाता है। इस सत्य कितने स्वरूप में बन गया, सत्य वही है, लेकिन कालांतर में उसके नाम अनेक हो गए। उसी सत्य को किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने शंकर कहा। जहां विचार कीजिए, आपके पास एक कागज है, आपके पास ब्रश है, कलर है, उसी एक ही कागज पर एक भाग में राम बनाए, एक में कृष्ण बनाए, एक में शंकर बनाए, कागज भी वही, ब्रश भी वही, कलर भी वही, बनाने वाला भी वही, लेकिन आकार से आप अलग अलग देख रहे हैं। अस्तित्व हमारा आपका जो है, जिसे वेदों ने सत्य कहा, उसी को पहले समझना है। व्यवहारिक बात, आप यहां बैठे हैं, आप मेरे शिष्य हैं, किसी के पिता भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के मामा भी हैं, और किसी के भतीजे और भांजे भी हैं। हैं तो आप वही, अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने संबंध से लोग देख रहे हैं। जब आप सो गए, अभी मैंने कहा आप मेरे शिष्य, मैं आपका गुरु, आपसे किसी ने पूछा तो आपने भी कहा कि मैं स्वामी मनीषानंद का शिष्य हूं, ये हमारे गुरु हैं। एक अज्ञान अवस्था की बात करूंगा, आपको गहरी नींद आ गई, मुझे गहरी नींद आ गई, ये अज्ञान अवस्था में जो मिनिमम है प्रकृति की अवस्था, इस अज्ञान अवस्था में कौन गुरु कौन शिष्य, कौन नर कौन नारी, कौन बालक कौन बालिका, प्रिय आत्मन, प्रकृति की नींद एक अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था में मिनिमम में हम अपने अस्तित्व में ही जाते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। विचार करें कि अज्ञान अवस्था में जब अपने अस्तित्व में पहुंचे तो न कोई गुरु न कोई शिष्य, न कोई पति न कोई पत्नी, लेकिन फिर जब जागे, ये मेरे शिष्य मेरे गुरु। अज्ञान अवस्था में जब भेद मिट गया, आप सत्य में अपने आप को उपस्थित किए, तो परमोच्च अवस्था में हम आप भी एक हैं। कोई साधना लेके चलो, कोई विधि अपनाओ, लेकिन जो साधना अपनाओगे परमोच्च अवस्था में अपने आप छूट जाइए। आज आप आश्रम में आए, कोई ट्रेन से आया, कोई गाड़ी लेकर आया, कोई राजदूत लेकर आया, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन जीप लेकर आया, कौन 25 लाख की गाड़ी लाया, कौन 10 लाख की लाया, कौन पैदल आ, लेकिन यहां आपकी उपस्थिति बता रही है कि जो भी साधन लेके चले आप यहां पहुंचे, तो आप कोई भी प्रक्रिया अपनाओ, आप कोई भी साधना अपनाएं, साधना की सिद्धि की अवस्था में प्रियात्मन नींद में सब कुछ छोड़ देते हैं। और ज्ञान के द्वारा हम इसके आगे बढ़ जाते, अतिक्रमण करते हैं। तो अज्ञान अवस्था में भेद मिट गया तो ज्ञान अवस्था में दो कैसे रहेंगे। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा प्रहार किया कि दुई जगदीश कहां से आए, ये दो सत्य कहां से आया। आप परमोच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं किए, इसलिए आपको अंतर नजर आ रहा है, आपको विरोध नजर आ रहा है, आप किस पर क्रोध करते हैं, देखा जाए तो अपने आप पे करते हैं। मनीषानंद की बात से आपको क्रोध आया, क्रोध आपके अंदर था, मनीषानंद निमित्त बने, क्योंकि मनीषानंद की अच्छी बात को स्वीकार नहीं किया, कड़वी लगी, तो मनोविज्ञान कहता आप अपने आप से लड़ रहे हैं, मनीषानंद से नहीं लड़ रहे। यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ। और जो अपने आप से लड़ेगा तो शांति कैसे रहेगी, जा विचार तो करो, थोड़ा हंस के कहूं, जब दो देशों की लड़ाई होती है तो सफेद झंडा दिखा दीजिए तो लड़ाई बंद हो जाती है। हमारे आपके बाल सफेद हो गए, झंडा निकल आया, आखिर में कब तक लड़ते रहोगे? ये सफेद झंडा तो आ गया, फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही अपने आप के। और गुजरात का रिवाज है, बड़े प्यार से कहता हूं, जब चावल आ जाए तो फिर पूरी और लपसी नहीं मांगना। जब तक पूरी लपसी खानी है तब तक चावल के लिए इनकार करना। चावल सफेद, अब चावल मांग के खा लिया फिर भी कहते हैं लपसी लाओ, लोग कहते हैं कि ये भिखारी लगता होगा। बड़े प्यार से कह रहा। तो यहां हम आप जो सफेद झंडे हो गए उनकी बात करता हूं, हमारे भी सफेद हो गए। अब आप किससे लड़ रहे? आज मैंने सपना देखा, कि पड़ोसी आया और मुझसे लड़ा। प्रियात्मन, बड़ी गहरी बात बहुत सरल ढंग से बता रहा हूं। पड़ोसी आया सपने में और मुझसे लड़ा, तो जगने पर पड़ोसी के पास जाकर कहूंगा कि भाई तू सपने में आके क्यों लड़ा? जागने से सपना जो सच लग रहा था वो जागने से मिथ्या हो गया, और आप गुरुओं के पास आकर जागे हैं कि सो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस बात ही समझ में नहीं आ रही। अगर आप वास्तव में सोए हैं तो मैं आपको जगा दूंगा, लेकिन अगर नकली ढंग से सोए हैं तो ब्रह्मा भी नहीं जगा सकते। इसलिए हमारे संतों ने कहा, हाथ जोड़ के कहता हूं, मूरख हृदय ने चेत जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख किसको माना गया? जानता है फिर भी जागना नहीं चाहता। मैं आपसे, अपने आप से ही, आप मेरे अंग हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को ही बता रहा हूं, आप मेरे ही स्वरूप हैं। कितने लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और फिर भी पीते हैं, तो हमारे संत कहते हैं ऐसे मूर्ख को कोई सुधार नहीं सकता, जो जानता है फिर भी करता। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सठ सुधरही सत संगत पाई, मूर्ख हृदय ने चेत जो गुर मिले विरंच सम। अरे ब्रह्मा भी आके समझाएं। कृष्ण दुर्योधन को बता रहे, समझा रहे, चल तू पांच गांव दे दे और राज कर, इस हिसाब से देखा जाए तो। कृष्ण समझा रहे हैं और परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मूर्ख में परिवर्तन नहीं आता। जो रास्ता नहीं जानता उसे हम रास्ते पर ला सकते हैं, जो जानता है चलना ही नहीं चाहता उसे कौन लाएगा? प्रेम की सभी बात कर रहे हैं, सत्य की सभी बात कर रहे हैं, सत्यम बद धर्मम चर की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन आचरण में गुरु जी का चरण तो पकड़ते हो, लेकिन गुरु जी के चरण के बाद आचरण कितना है? कल भी आज भी काफी लोग मेरे पास आए, स्वामी जी ये आपका चित्र है बहुत, इस पर दस्तखत कर दो। प्रेम से किया, आपने मेरा चित्र लिया, बहुत सुंदर है, मेरे से दस्तखत कराया, तो मेरे चित्र पर मेरे से दस्तखत करा लिया, लेकिन आप अपना चित्र लाकर मेरी दस्तखत कराएं, कहीं ये ना हो कि मैं अपने पर ही दस्तखत करता रहूं और आप लोग इधर उधर भटकते रहो। तो दूसरी बार प्रभु, हम अपने अच्छे फोटोग्राफर संजय भाई से कहेंगे कि संजय जी जो मेरा चित्र लेने आए उनसे कहो कि तुम्हारा भी चित्र खींचूंगा, 100 रुपया पहले लाओ और मैं अपने पर भी सिग्नेचर करूंगा और आपके चित्र पर करूंगा, और आप अपना चित्र मेरे बगल में रखिए इसलिए कि मेरे विचारों को भी स्वीकार कीजिए। पहले विज्ञान चित्रों के पक्ष में नहीं था, फोटोज के पक्ष में नहीं था, लेकिन आज हो गया। जिसे आप मानते हैं, जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उसका चित्र जब आपके पास रहेगा, वो राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, साईं बाबा भी हो सकते हैं, जलाराम भी हो सकते हैं, कोई पीर भी हो सकता है, कोई फकीर भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिले, उनके विचारों से हम आगे बढ़ें। इसलिए अब मनोविज्ञान भी कहता है जिनका जीवन उच्च है, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उनका चित्र घर में रहने से, हाथ में रहने से प्रेरणा मिलेगी, एक इंस्पिरेशन आप प्राप्त करेंगे। तो ये मनीषानंद का विचार है। ये दूसरी बात, जब आप आइएगा तो अपनी फोटो लाना, क्योंकि मैं उस पर दस्तखत करूंगा। जिस नोट पर जिस देश की दस्तखत है गवर्नर के, वहीं चलेगी, दूसरी जगह नहीं चलेगी, बदलना पड़ेगा। तो एक बार मैं दस्तखत कर दूंगा तो कम से कम बदलोगे तो नहीं, नहीं तो अमेरिका जाके बदला दो। इसलिए कह रहा हूं बड़े प्यास। अब आप कहते हैं स्वामी जी आप एक क्या कर रहे हैं, आप आते यहां इतना पंजाब से आए, दिल्ली से आए, बंबई से आए, पूना से आए, हमारा पूरा गुजरात तो है ही, मैं नाम नहीं लेता, इसमें क्लास वन ऑफिसर्स भी हैं, कमिश्नर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, प्रिंसिपल सब हैं, लेकिन मैं कमिश्नर का नाम लूंगा प्रिंसिपल का तो मेरी बात तो बाद में रहेगी, पहले तो महाराज जी एडमिशन करवा दो, कमिश्नर से काम करवा दो, इसलिए नाम नहीं लेता। जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। अरे प्रिंसिपल कमिश्नर आपको इनाम देने के लिए आएगा जो मैं कहता हूं, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर भी आपका स्वागत करेंगे, मेरी बात मानो। इसलिए कहा गया है द रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड। आपके अंदर वो योग्यता है कि मांगने से इज्जत नहीं मिलेगी, इतने लायक बनो कि लोग आपकी इज्जत करें। यू मस्ट कमांड द रिस्पेक्ट, डोंट डिमांड। इज्जत मांगो नहीं, बल्कि इतने लायक बनो कि आप की इज्जत लोग करें। ये भूमिका में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मांगने से क्या मिलेगा, जितनी योग्यता होगी मिल जाएगी। आप 85% आए तो मुझे एडमिशन मांग रहे हो, कौन देगा, और 98 आया तो बुला के देंगे। मैं आपको 85 में नहीं रखना चाहता, 98 में रखना चाहता हूं कि हर कॉलेज आपको बुलाए। और मैं बड़े प्यार से कहता हूं मनीषानंद एक माध्यम है, एक हेल्प है, एक गाइड है, एक मदद है। मुझे गुरु मत मानो, लेकिन एक हेल्प मानो, एक गाइड मानो। मेरी मदद से, मेरे गाइडेंस से इतने लायक बनो कि जैसे फूल खिलता है सुगंध अपने आप आ जाती है, मांगनी नहीं पड़ती, ऐसे आप इतने लायक बनो कि परमात्मा खुद आपके अंदर आकर बैठ जाए, ढूंढना न पड़े, मांगना न पड़े। और वो योग्यता आप में है, दैट यू डिजर्व। वही मैं बात कहता हूं, हमारे अब होने वाले हो तो हो ही गए, लेकिन जो व्यवहारिक बात होने वाले, राष्ट्रपति का जीवन देखिए, अब्दुल कलाम का, पहले भी हुए, आज जो वर्तमान का राष्ट्रपति आपके साथ, उसकी जीवनी से तो प्रेरणा लीजिए कितना सहज है। मैं यहां जाति पाति की बात नहीं उठा, लेकिन उसने सत्य को स्वीकार किया और देखा सत्य की प्राप्ति कहां से है, वेद और गीता का अध्ययन किया, गीता 24 घंटे अपने पॉकेट में रखता। यहां जाति पांति की बात नहीं कर रहा हूं, ये गीता की बात बताएं, हम अपने सत की बात बताएं, वसुधैव कुटुंबकम की बात बताएं, पूरा विश्व आज आपको स्वीकार कर रहा है। गीता का अनुवाद लगभग 30-35 भाषाओं में तो मैंने देखा, लेकिन लोग कहते हैं लगभग 60 भाषाओं में, 30-35 भाषाओं में तो हमने देखा। अब्दुल कलाम गीता का पाठ क्यों करता है, वेद का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि जो अस्तित्व है, जो सत्य है, वो जाति पांति का नहीं होता। जब नर और नारी हम नहीं रहे अस्तित्व में, तो अस्तित्व की प्राप्ति होने के बाद जब कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, ये गौरव की बात है। हम गुजरात के हैं, हम हिंदू हैं, सन्यासी हैं, ये गौरव की बात है। इस अस्तित्व का गौरव, आत्म गौरव, तो अस्तित्व का आत्म गौरव होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। गौरव में मैं अपनी भी इज्जत करूंगा, आपकी भी इज्जत करूंगा, और अहंकार में मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा लेकिन आपसे इज्जत चाहूंगा। गौरव और अहंकार में अंतर समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, आत्मसम्मान। भारतीय संस्कृति में आत्मसम्मान की बात है, अहंकार की बात नहीं है, आत्म गौरव की बात है, अभिमान की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात है, अभिमान की बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में नम्रता है, कायरता नहीं है। भारतीय संस्कृति में वीरता है, क्रूरता नहीं है। अब इसे समझिए, आज पूरा विश्व आपको स्वीकार कर रहा है और हम अपनी चीज को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने ईश्वर को स्वीकार किया, आप राम की पूजा करते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हैं, और आप कहते हैं मेरा राम सब जगह है, आप कहते हैं मेरा कृष्ण सब जगह है, तो राम आपके अंदर है। आपने राम को स्वीकार किया और अपने आप को नहीं स्वीकार किया, तो राम को आप छोटा बना रहे हो, कृष्ण को छोटा बना रहे हो। इसलिए जिस अस्तित्व को स्वीकार करते हो, उसका चाहे नाम राम हो कि कृष्ण हो कि शंकर हो, वो आपके अंदर है। इसलिए जितना आदर राम का करते हो, उतना आदर आप अपना भी करें। लेकिन मैं देख रहा हूं, आपने राम को स्वीकार किया, कृष्ण को स्वीकार किया, सीता को स्वीकार किया, राधा को स्वीकार किया, लेकिन कई बार विचार आता है, नाम तो सीता और देखा जाए तो पूरा अंगारा, नाम तो करोड़ीमल और बकरियां चरा रहे। एक बात करा प्यार से, आप जन्म से अपने उस सत्य को, उस अस्तित्व को स्वीकार करो। कुछ भी हो जाए, कहानियों में बताया गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतिहास आपका बताता है, जब पोरस हारा, सिकंदर के सामने आया, सिकंदर का था, बोलो पोरस तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? कहा बंदी बनाने से शेर शेर बकरी नहीं बनता, याद रखो मैं भी राजा था, आज भी राजा हूं, बंदी होने से मैं बकरी नहीं बन गया। एक राजा जैसे राजा के साथ व्यवहार करता है, ऐसा करो। ये आत्म गौरव आत्म सम्मान दे करके सिकंदर छोड़ दिया। कल ही रात में बताया था, अपने आत्म सम्मान का हनन न करो, आत्म गौरव का हनन न करो, नहीं तो आप अपने भगवान को, अपने गुरु को छोटा कर रहे हो। कल रात में कहा, और उस आत्मसम्मान बनाने के लिए पहले सत्य को समझना पड़ेगा। आप ब्राह्मण है, गौरव है, आप क्षत्रिय गौरव, मैं गौरव की बात को मिटाना नहीं चाहता, लेकिन गौरव में जो अहंकार आ गया वो सत्यानाश कर रहा है। बस मेरे से बड़ा कोई नहीं, अहम ब्रह्मास्मि।